अध्याय 61 शाऊल का बहिष्कृत होना। ये अध्याय 1 शमूएल 15 पर आधारित है। गिलगाल की विकट परिस्थिति में विश्वास की परख में खरा उतरने में शाऊल असफल रहा था और उसने परमेश्वर के संबद्ध धर्मक्रिया का अपमान किया था, लेकिन उसकी गलतियां अभी सुधारी थी और परमेश्वर ने उसे उसकी आज्ञाओं के पालन और उसके वचन में निर्विवाद विश्वास का सबक सीखने के लिए दूसरा अवसर प्रदान किया। गिलगाल में भविष्यद्वक्ता द्वारा फटकारे जाने के समय शाऊल को अपने द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में कोई पाप दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि उसके प्रति किया गया व्यवहार अन्यायपूर्ण था और उसने अपनी गलती के लिए बहाने बनाए और अपने कृत्यों का दोष सिद्ध करने का प्रयत्न किया। उस समय से वह भविष्यद्वक्ता के साथ कम संपर्क करता था। शमूएल शाऊल को अपने निज पुत्र समान प्रेम करता था, जबकि निर्भीक और क्रुद्ध स्वभाव के शाऊल ने भविष्यद्वक्ता को अधिक सम्मान दिया था, लेकिन वह शमूएल की ताड़ना से अप्रसन्न था और इस कारण जहां तक संभव था उसका सामना नहीं करता था। लेकिन प्रभु ने अपने दास को एक अन्य संदेश के साथ शाऊल के पास भेजा। आज्ञा पालन के द्वारा वह अभी भी परमेश्वर के प्रति अपनी स्वामी भक्ति और इसराइल का नेतृत्व करने की योग्यता को प्रमाणित कर सकता था। शाऊल को आज्ञा पर ध्यान देने की आवश्यकता का आभास कराने के लिए शमूएल ने स्पष्टता से बताया कि जिस अधिकार से उसने शाऊल को सिंहासन पर बैठने के लिए बुलाया था, उसी ईश्वरीय निर्देश से वह अभी बोल रहा था। भविष्यद्वक्ता ने कहा, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इसराइलियों से क्या किया। जब इसराइली मिस्र से आ रहे थे, तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे पूरी तरह नष्ट कर दे और उन्हें छोड़ना मत, पुरुष और स्त्री, शिशु या दूध पीता बच्चा, बैल और भेड़, ऊंट और गधा, सबको मार डाल। बीहर में इसराइल पर सर्वप्रथम चढ़ाई करने वाले अमालेकी थे और इस पाप के लिए और इसके साथ उनकी नीचतापूर्ण मूर्ति पूजा और परमेश्वर को उनकी चुनौती के लिए परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उन्हें दंडादेश दिया। ईश्वर के निर्देशन में इसराइल के प्रति उनकी निर्दयता के इतिहास का उल्लेख किया गया था और उन्हें आज्ञा दी गई, तू अमालेक का नाम धरती पर से मिटा डालना और तुम इस बात को न भूलना। व्यवस्था विवरण 25:19। 400 वर्षों तक इस दंडादेश का निष्पादन विलंबित किया गया था, लेकिन अमालेकी अपने पापों से नहीं फिरे। परमेश्वर जानता था कि संभव होने पर ये दुष्ट लोग पृथ्वी पर से उसके लोगों और उसकी आराधना को पूरी तरह मिटा देंगे। अब इतने दिनों से आस्थगित उस दंडादेश के निष्पादन का समय आ गया था। दुष्टों के प्रति परमेश्वर की चिर सहिष्णुता के अभ्यास ने आज्ञा उल्लंघन करने वालों को निर्भीक बनाया, लेकिन उनका दंड आस्थगित किए जाने के कारण और भी निश्चित और भयानक होगा। यशाया 28:21 में लिखा है, यहोवा ऐसे उठ खड़ा होगा जैसा वो पराजीम नामक पर्वत पर खड़ा हुआ और जैसा गिबोन की तराई में उसने क्रोध दिखाया था, वो अब फिर क्रोध दिखाएगा जिससे वो अपना काम करे, अपना अद्भुत कार्य और वो कार्य करे जो अनोखा है। हमारे दयावान परमेश्वर के लिए दंड का कार्य एक अद्भुत कार्य है। यहेजकेल 33:11 में लिखा है, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। निर्गमन 34:6-7 में लिखा है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य से परिपूर्ण, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को वो किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वो प्रतिशोध में आनंदित नहीं होता, लेकिन वो अपनी व्यवस्था के उल्लंघन करने वालों पर दंडादेश अवश्य भेजेगा। पृथ्वीवासियों को अधर्म और विनाश से सुरक्षित रखने के लिए ऐसा करने के लिए वो बाध्य हो जाता है। कुछ को बचाने के लिए उसे उनको काट डालना होगा जो पाप के कारण कठोर हो गए हैं। नहूम 1:3 में लिखा है, यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है, वो दोषी को किसी प्रकार निर्दोष नहीं ठहराएगा। धार्मिकता में किए गए श्रद्धायुक्त भय उत्पन्न करने वाले कार्यों से वो अपनी कुचली हुई व्यवस्था के अधिकार को न्याय संगत सिद्ध करेगा। न्याय के निष्पादन में उसकी हिचकिचाहट, पापों की जघन्यता को और उल्लंघन करने वाले को मिलने वाले प्रतिफल की कठोरता को प्रमाणित करती है। लेकिन दंडादेश देते समय परमेश्वर ने दया का स्मरण रखा। अमालेकियों को नष्ट होना था, लेकिन उनके बीच रहने वाले केनियों को छोड़ दिया गया। ये लोग मूर्ति पूजा से अछूते तो नहीं थे, लेकिन परमेश्वर के भक्त और इसराइल के मित्र थे। इसी जनजाति से मूसा का साला होबाब था, जो बीहर में इसराइलियों की यात्रा में उनके साथ था और देश के बारे में उसकी जानकारी से महत्वपूर्ण सहायता मिली थी। मिकमाश में पलिश्तियों की पराजय के समय से शाऊल ने मोआब, अम्मोन, एदोम, अमालेकियों और पलिश्तियों से युद्ध किया था, और जिधर भी उसने हाथ डाला, विजय उसी की हुई। अमालेकियों के विरुद्ध आज्ञा प्राप्त करने पर उसने अविलंब युद्ध की घोषणा कर दी। उसके निज अधिकार के साथ भविष्यद्वक्ता का अधिकार भी संलग्न था, और युद्ध के आह्वान पर इसराइली पुरुष उसके मोर्चे पर एकत्रित हो गए। इस अभियान में अपनी शक्ति अथवा पदवी बढ़ाने के उद्देश्य से भाग नहीं लेना था। इसराइलियों को ना तो विजय का सम्मान और ना ही उनके शत्रुओं के विजयोपहारों को प्राप्त करना था। उन्हें युद्ध में हिस्सा केवल परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता के कृत्य के तौर पर लेना था, जिसका उद्देश्य अमालेकियों पर उसकी दंडाज्ञा का निष्पादन करना था। परमेश्वर चाहता था कि सभी राष्ट्र उन लोगों के विनाश को देखे जिन्होंने उसकी सार्वभौमिकता को ललकारा था, और यह भी देखे कि उनका विनाश उन्हीं लोगों के द्वारा हुआ जिनके प्रति उन्होंने घृणा की थी। तब शाऊल ने हवीला से लेकर शूर तक, जो मिस्र के पूर्व में है, अमालेकियों को मारा और उनके राजा आगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सारी प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। परंतु आगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था, उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कृपा की और उन्हें पूरी तरह नष्ट नहीं किया, परंतु जो कुछ तुच्छ और कूड़ा करकट था, उसे उन्होंने पूरी तरह नष्ट कर दिया। अमालेकियों पर शाऊल की यह विजय शाऊल की सभी विजयों में विलक्षण थी, और इसने शाऊल के हृदय के घमंड को दोबारा जागृत कर दिया, जो उसके लिए सबसे बड़ा खतरा था। परमेश्वर के शत्रुओं के सर्व सत्यानाश की पवित्र आज्ञा को आंशिक रूप से ही पूरा किया गया था। राजसी युद्धबंदी की उपस्थिति के द्वारा अपनी विजय संबंधी वापसी के गौरव को ऊंचा करने को महत्वाकांक्षी, शाऊल ने पड़ोसी राष्ट्रों की प्रथाओं का अनुकरण करने का जोखिम उठाया और अमालेकियों के क्रूर और रणकुशल राजा आगाग को मृत्यु के घाट नहीं उतारा। लोगों ने अपने लिए अच्छे से अच्छे भेड़ बकरियों, मवेशी और भारवाहक पशु, ये कहकर कि उन्हें परमेश्वर के लिए बलि की भेंट के रूप में चढ़ाना है, सुरक्षित कर लिए और इस आधार पर अपने पाप को क्षमा योग्य ठहराया। लेकिन वास्तव में उनका प्रयोजन इन पशुओं को बलि के लिए अपने पशुओं के बदले में प्रयोग करना था, ताकि उनके पशु बचे रहें। शाऊल की निर्णायक परख का समय आ गया। परमेश्वर की इच्छा के प्रति उसके हठीले निरादर ने निरंकश सम्राट के जैसे शासन करने के उसके संकल्प को दिखाते हुए प्रमाणित कर दिया कि परमेश्वर के प्रतिनिधि के तौर पर उसमें राजसी सत्ता निहित नहीं की जा सकती थी। जब शाऊल और उसकी सेना विजय के उत्साह में घर लौट रहे थे, भविष्यद्वक्ता शामुएल का घर शोकाकुल था। उसे प्रभु द्वारा राजा की कार्यप्रणाली की निंदा करते हुए एक संदेश मिला था। मैं शाऊल को राजा बनाकर पछताता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। भविष्यद्वक्ता उपद्रवी राजा के तौर तरीकों से अत्यंत खिन्न था। उसने रो रोकर रात भर प्रार्थना की कि वह भयानक दंडाज्ञा वापस ले ली जाए। परमेश्वर का प्रायश्चित मनुष्य के प्रायश्चित जैसा नहीं है। इसराइल का बलमूल न तो झूठ बोलता है और न पछताता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है कि पछताए। मनुष्य के प्रायश्चित का तात्पर्य मन परिवर्तन से है, परमेश्वर के प्रायश्चित का तात्पर्य संबंध और परिस्थितियों में परिवर्तन से है, उन शर्तों की सहमति के आधार पर जिसके द्वारा मनुष्य पर ईश्वर की कृपा दृष्टि हो सकती है। मनुष्य परमेश्वर के साथ अपना संबंध बदल सकता है, या अपने ही कार्यों द्वारा वह उसकी कृपा दृष्टि के दायरे से बाहर हो सकता है, लेकिन प्रभु आज और युगानुयुग एक सा है। इब्रानियों 13:3। शाऊल की अनाज्ञाकारिता ने परमेश्वर के साथ उसके संबंध को बदल दिया, लेकिन परमेश्वर के साथ स्वीकृति की शर्तें अपरिवर्तनशील है। परमेश्वर के नियम वही हैं, क्योंकि जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। याकूब 1:17। दुखी हृदय के साथ दूसरे दिन प्रातकाल ही शामुएल दोषी राजा से मिलने गया। शामुएल को आशा थी कि गहन चिंतन करने पर शाऊल को अपने पाप का आभास होगा और वह समर्पण और प्रायश्चित के द्वारा परमेश्वर की कृपा दृष्टि पुनः प्राप्त कर सकेगा। लेकिन जब आज्ञा उल्लंघन या पाप के मार्ग पर पहला कदम रखा जाता है तो रास्ता आसान हो जाता है। शाऊल, जो अवज्ञा करने से गिर चुका था, होठों पर झूठ लिए शामुएल के पास पहुंचा। उसने कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। भविष्यवक्ता के कानों तक पहुंचने वाले स्वर ने अनाज्ञाकारी राजा के कथन को अस्वीकार्य ठहराया। उसने आलोचना भरा प्रश्न किया, फिर भेड़ बकरियों का ये मिमियाना और गाय बैलों का ये रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? शाऊल ने उत्तर दिया, वे तो अमालेकियों के यहां से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है और बाकी सब का तो हमने सत्यनाश कर दिया है। लोगों ने शाऊल के निर्देशों का पालन किया था, लेकिन स्वयं को बचाने के लिए वह अपनी अनाज्ञाकारिता के पाप के लिए उन्हें दोषी ठहराने को तैयार था। शाऊल के बहिष्करण के संदेश ने शामुएल के हृदय को अकथनीय दुख पहुंचाया। यह संदेश इज़राइल की समस्त सेना के सम्मुख दिया जाना था, जब वे विजय संबंधी उल्लास और गर्व से भरे हुए थे। उस विजय के अवसर पर जिसका श्रेय अपने राजा के रणकौशल साहस को दिया, क्योंकि इस संघर्ष में शाऊल ने इज़राइल की सफलता के साथ परमेश्वर को संबद्ध नहीं किया था। लेकिन जब भविष्यद्वक्ता ने शाऊल के उपद्रव के प्रमाण देखे, उसका क्रोध भड़क उठा, ये जानकर कि जिस पर परमेश्वर की इतनी कृपा दृष्टि थी उसी ने स्वर्ग की आज्ञा का उल्लंघन किया और इज़राइल को पाप में ले गया। शामुएल राजा के बहानों के धोखे में नहीं आया। क्रोध और दुख के साथ उसने घोषणा की, ठहर जा, और जो बात यहोवा ने आज रात मुझसे कही है वह मैं तुझको बताता हूं। जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, तब क्या तू इज़राइली गोत्रों का प्रधान न हो गया? और क्या यहोवा ने इज़राइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? उसने अमालेक से संबंधित परमेश्वर की आज्ञा को दोहराया और राजा की अनाज्ञाकारिता का कारण पूछा। शाऊल स्वयं को न्याय संगत ठहराने में लगा रहा। निस्संदेह मैं यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर गया और अमालेकियों के राजा को ले आया हूं और अमालेकियों का सत्यनाश किया है, परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों, अर्थात वे प्रमुचा चीजें जिन्हें पूर्णतया नष्ट किया जाना था, गिलगाल में तेरे परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। कठोर और गंभीर शब्दों के प्रवाह में भविष्यद्वक्ता झूठ के शरण स्थान को बहा ले गया और उसने अखंडनीय दंडादेश की घोषणा की। क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, आज्ञा मानना तो बलि करना और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और अभिचार एक जैसे पाप है और हट करना मूर्तियों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। जब शाऊल ने यह भयावह दंडादेश सुना, उसने कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। भविष्यद्वक्ता द्वारा की गई निंदा से भयभीत होकर शाऊल ने अपने दोष को स्वीकार किया, जिसे उसने पहले हठ में मानने से मना कर दिया था। लेकिन वो लोगों पर आरोप लगाता रहा कि उसने ये पाप उनके डर से किया था। वो पाप के लिए दुख नहीं था, वरन पाप के दंड का भय था, जिसके कारण इज़राइल के राजा ने शामुएल से विनती की, अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौटा कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। यदि शाऊल का पश्चाताप वास्तविक होता तो उसने अपने पाप का सार्वजनिक तौर पर अंगीकार किया होता, परंतु अपने अधिकार को कायम रखना और लोगों की उसके प्रति स्वामी भक्ति को बनाए रखना उनकी चिंता के मुख्य विषय थे। वो राज्य के साथ अपने प्रभाव को प्रबल करने के लिए वो शामुएल की उपस्थिति के सम्मान का अभिलाषी था। भविष्यद्वक्ता ने उत्तर दिया, मैं तेरे साथ न लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इज़राइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। जब शामुएल जाने के लिए घूमा तो भय की पीड़ा में शाऊल ने उसके आवरण के छोर को पकड़ा कि वो उसे रोक सके, लेकिन वो उसके हाथों में फट गया। इस पर भविष्यद्वक्ता ने घोषणा की, आज यहोवा ने इज़राइल के राज्य को फाड़कर तुझसे छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है। परमेश्वर की अप्रसन्नता से अधिक शाऊल शामुएल के उसके प्रति विमुख होने से व्याकुल था। वो जानता था कि लोग उससे अधिक भविष्यद्वक्ता में विश्वास रखते थे। यदि पवित्र आदेश के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को राजा नियुक्त किया गया तो शाऊल के लिए अपने आधिपत्य को कायम रखना असंभव था। शामुएल द्वारा पूर्णतया त्याग दिए जाने पर उसे तात्कालिक विद्रोह का भय था। शाऊल ने भविष्यद्वक्ता से विनती की कि एक धार्मिक विधि में सार्वजनिक तौर पर उसके साथ सम्मिलित होकर वो लोगों और पुरनियों के सम्मुख उसका सम्मान करे। ईश्वरीय निर्देश के द्वारा शामुएल ने राजा के निवेदन के आगे समर्पण कर दिया, जिससे कि विद्रोह का कोई अवसर न दिया जाए। लेकिन धर्म क्रिया में वो केवल एक मूक दर्शक बना रहा। एक कठोर और भयंकर न्याय संबंधी कार्य का संपादन अभी होना था। शामुएल को सार्वजनिक तौर पर परमेश्वर के सम्मान की पुष्टि करनी थी और शाऊल की कार्यप्रणाली का तिरस्कार करना था। उसने अमालेकियों के राजा के उसके सम्मुख लाए जाने की आज्ञा दी। इज़राइल की तलवार से घात किए हुओं से सर्वश्रेष्ठ आगाग सबसे अधिक दोषी और निर्दयी था वो, जिसने परमेश्वर के लोगों से घृणा की थी और उनका विनाश करना चाहा था, और जिसके प्रभाव से मूर्ति पूजा को सबसे अधिक बढ़ावा मिला था। स्वयं को संतुष्ट करते हुए कि मृत्यु का खतरा टल गया था, वो भविष्यद्वक्ता के आदेश पर आया। शामुएल ने घोषणा की, जैसे स्त्रियां तेरी तलवार से निर्वंश हुई है, वैसे ही तेरी माता भी स्त्रियों में निर्वंश होगी। तब शामुएल ने अगाग को गिलगाल में यहोवा के सामने टुकड़े टुकड़े किया। इसके बाद शामुएल रामा में अपने घर लौट गया और शाऊल गिबा में अपने घर लौट गया। इसके बाद भविष्यद्वक्ता और राजा केवल एक बार मिले। सिंहासन ग्रहण करने के लिए बुलाए जाने के समय शाऊल के अपनी निज क्षमताओं के बारे में अभिमान रहित अनुमान था और निर्देशित किए जाने के लिए सहमत था। उसमें ज्ञान और अनुभव का अभाव था और उसके चरित्र में कई गंभीर त्रुटियां थीं, लेकिन प्रभु ने उसे मार्गदर्शक और सहायक के रूप में पवित्र आत्मा प्रदान किया और उसे ऐसे पद पर आसीन किया जहां वो इज़राइल के शासक के लिए अपेक्षित गुणों को विकसित कर सकता था। यदि वो ईश्वरीय ज्ञान व बुद्धिमत्ता द्वारा विनती करते हुए दीन रहा होता तो उसे अपने ऊंचे पद के कर्तव्यों का सफलता व सम्मान के साथ निर्वाह करने के लिए सुयोग्य किया जाता। परमेश्वर के अनुग्रह के प्रभाव में प्रत्येक सद्गुण दृढ़ होता चला जाता और बुराई की प्रवृत्ति घटती जाती। जो स्वयं को परमेश्वर के प्रति समर्पित करते हैं उनके लिए परमेश्वर यही कार्य करता है। कई हैं जिन्हें उसने अपने कार्य में ऊंचे पदों पर बुलाया है, क्योंकि वो उनमें दीन व सिखाने योग्य भावना है। अपनी सूझबूझ में वो उन्हें वहां नियुक्त करता जहां वे उससे सीख सकते हैं। वो उन्हें उनके चरित्र की त्रुटियां दिखाता है और जो भी उसकी सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं वो उन्हें गलतियां सुधारने को सामर्थ्य प्रदान करता है। लेकिन शाऊल ने स्वयं के गौरवान्वित होने की परिकल्पना की और अपने अविश्वास और अवज्ञा के द्वारा परमेश्वर का अपमान किया। हालांकि सिंहासन ग्रहण करने के समय वो दीन और आत्मअविश्वासी था, सफलता ने उसे आत्मविश्वासी बना दिया। उसके राज की प्रथम विजय ने उसके हृदय के उस घमंड को सुलगाया जो उसके लिए सबसे बड़ा खतरा था। याबेश गिलाद के छुटकारे में प्रकट किए गए रणकौशल और साहस ने पूरे राज्य को सम्मानित किया और वे भूल गए कि वो केवल एक माध्यम था जिसके द्वारा परमेश्वर ने कार्य किया था। और हालांकि प्रारंभ में शाऊल ने गौरव का श्रेय परमेश्वर को दिया, परंतु बाद में उसने सारा आदर स्वयं के लिए ही ले लिया। पर परमेश्वर पर अपनी निर्भरता को भूल गया और अपने हृदय में उससे अलग हो गया। इस प्रकार गिलगाल में परिकल्पना और पवित्र स्थान के अपमान के लिए रास्ता तैयार हो गया। इसी अंधे आत्मविश्वास के कारण उसने शमूएल की भर्त्सना का तिरस्कार किया। शाऊल शमूएल को परमेश्वर द्वारा भेजा गया भविष्यद्वक्ता मानता था, इसलिए उसे उसकी फटकार को स्वीकार करना चाहिए था, हालांकि वो स्वयं नहीं देख पा रहा था कि उसने पाप किया है। यदि वो अपने पाप को देखने और उसका अंगीकार करने को तैयार होता, ये कटु अनुभव भविष्य के लिए बचाव प्रमाणित होता। यदि प्रभु ने उस समय शाऊल से स्वयं को पूर्णतया अलग कर लिया होता, तो बीते समय की गलतियों को सुधारने हेतु एक विशेष कार्य के संपादन को उसके सुपुर्द करते हुए उसने अपने भविष्यद्वक्ता के माध्यम से उससे बात न की होती। जब कोई परमेश्वर की संतान होने का दावा करने वाला उसकी इच्छा को पूरी नहीं करता और दूसरों को परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति बेपरवाह और श्रद्धाहीन होने के लिए प्रभावित करता है, उसके लिए फिर भी उसकी असफलताओं को विजय में बदलना संभव है। यदि वो निंदा को पश्चाताप के साथ ग्रहण करे और विश्वास और दीनता के साथ प्रभु के पास लौट आए। पराजय का अपमान हमारे लिए आशीष प्रमाणित होता है, क्योंकि वो हमें दिखाता है कि परमेश्वर की सहायता के अभाव में हम उसकी इच्छा को पूरी नहीं कर सकते। जब शाऊल ने परमेश्वर के पवित्र आत्मा द्वारा उसे भेजी गई फटकार से मुंह फेर लिया और ढीठ होकर स्वयं को न्यायसंगत ठहराता रहा, तो उसने उस एकमात्र साधन को अस्वीकार किया जिसके द्वारा परमेश्वर उसे उसी से बचाने का कार्य कर सकता था। शाऊल ने स्वेच्छा से स्वयं को परमेश्वर से अलग किया था। वह ईश्वरीय मार्गदर्शन या सहायता तब तक प्राप्त नहीं कर सकता था जब तक कि वह अपने पाप के अंगीकार द्वारा परमेश्वर के पास न लौटे। गिलगाल में इज़राइल के सम्मुख खड़े होकर परमेश्वर के लिए बलि की भेंट चढ़ाते हुए शाऊल ने बड़ी कर्तव्यनिष्ठता का परिचय दिया, लेकिन उसकी धर्मपरायणता वास्तविक नहीं थी। ईश्वर की आज्ञा के प्रत्यक्ष विरोध में की गई एक धर्म क्रिया ने केवल शाऊल के हाथों को कमजोर किया और उस मदद से परे रखा जो ईश्वर उसे देने को तैयार था। अमालेक के विरुद्ध अपने अभियान में शाऊल ने सोचा कि जिसके लिए प्रभु ने उसे आज्ञा दी थी उसमें जो भी आवश्यक था वह उसने किया, लेकिन प्रभु आंशिक आज्ञाकारिता से प्रसन्न नहीं था और न उसको अनदेखा करने को तैयार था जिसकी इतने संभाव्य उद्देश्य के द्वारा उपेक्षा की गई थी। परमेश्वर ने मनुष्य को उसके नियमों या अपेक्षाओं से दूर होने की तनिक भी स्वतंत्रता नहीं दी। व्यवस्था विवरण 12 आयत 8 28 में प्रभु इज़राइल से कहता है, जो काम जिसको भाता है वही वे करते हैं, वैसा तुम न करो, वरन इन बातों को जिनकी आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूं चित्त लगाकर सुन। किसी भी कार्यप्रणाली का निर्णय लेने से पहले हमें यह नहीं पूछना है कि क्या हम उसके परिणाम स्वरूप क्षति को देख सकते हैं, वरन यह कि वह परमेश्वर की इच्छानुकूल है या नहीं। नीति वचन 14 आयत 12 में लिखा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। आज्ञा मानना बलिदान करने से अच्छा है। परमेश्वर की दृष्टि में बलिदान की भेंटों का अपने आप में कोई महत्व नहीं था। इनको भेंटकर्ता द्वारा मसीह में विश्वास और पाप के प्रायश्चित को अभिव्यक्त करने और परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति भविष्य में आज्ञाकारिता की प्रतिज्ञा करने के लिए नियोजित किया गया था। पश्चाताप, विश्वास और आज्ञाकारी हृदय के अभाव में यह भेंटें निरर्थक थी। जब परमेश्वर की आज्ञा के प्रत्यक्ष उल्लंघन में शाऊल ने उसका बलिदान करने का प्रस्ताव रखा जिसे परमेश्वर ने विनाश को समर्पित किया था, तो यह ईश्वरीय सत्ता की स्पष्ट अवहेलना थी। वह धर्मक्रिया स्वर्ग का अपमान रही होगी। फिर भी शाऊल के पाप और पाप के परिणाम हमारे सामने होते हुए भी हम में से कितने वैसी ही कार्यप्रणाली का अनुकरण कर रहे हैं। वे परमेश्वर के किसी नियम को मानने और उस पर विश्वास करने की स्वीकृति नहीं देते, लेकिन वे परमेश्वर के लिए धर्म की औपचारिक विधियों का पालन करते रहते हैं। ऐसी धर्मक्रिया को परमेश्वर का आत्मा स्वीकार नहीं करता। धार्मिक समारोह या पर्वों को मानने में मनुष्य चाहे कितना ही लवलीन हो, यदि वे परमेश्वर की एक आज्ञा का जानबूझकर खंडन करते हैं तो प्रभु उन्हें स्वीकार नहीं करता। विद्रोह अभिचार के पाप जैसा है और हठीलापन अधर्म और मूर्ति पूजा के समान है। विद्रोह शैतान के साथ उत्पन्न हुआ और परमेश्वर की प्रति सभी विद्रोह प्रत्यक्ष रूप से शैतानी प्रभाव के कारण होते हैं। जो स्वयं को परमेश्वर के शासन प्रबंध के विरुद्ध व्यवस्थित करते हैं वे मुख्य स्वधर्म त्यागी के साथ संधि करते हैं और वह समझ को पथभ्रष्ट करने और इंद्रियों को मोहित करने के लिए अपनी शक्ति का अभ्यास करेगा। उसके प्रभाव से सभी कुछ कृत्रिम प्रकाश में प्रकट होगा। हमारे पूर्वजों की तरह जो भी शैतान के सम्मोहक आकर्षण के प्रभाव में होते हैं वे केवल पाप के द्वारा मिलने वाले लाभ को देखते हैं।
शैतान की भ्रामक शक्ति का इससे ठोस प्रमाण नहीं दिया जा सकता कि उसके मार्गदर्शन में चलने वाले स्वयं को इस विश्वास से धोखा देते हैं कि वे परमेश्वर की सेवा टहल कर रहे हैं। जब कोरह, दातान और अबिराम ने मूसा के अधिकार के विरुद्ध उपद्रव किया तब उन्होंने सोचा कि वे उन्हीं के समान एक व्यक्ति मात्र एक मानवीय अगुवे का विरोध कर रहे हैं और वे विश्वास करने लगे कि वे यथार्थ में परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के चुने हुए साधन का तिरस्कार करने में वे मसीह का तिरस्कार कर रहे थे। उन्होंने परमेश्वर के आत्मा को अपमानित किया था। इसी प्रकार मसीह के दिनों में यहूदी शास्त्री और पुरनियों ने, जो परमेश्वर के सम्मान के लिए बहुत उत्साह दिखाते थे, उसके पुत्र को क्रूस पर चढ़ा दिया। वही भावना आज भी उनके हृदयों में विद्यमान है जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा का अनुकरण करते हैं। शाऊल के पास शमूएल के परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने का पर्याप्त प्रमाण था। भविष्यद्वक्ता के माध्यम से परमेश्वर के आदेश का निरादर करने का, उसके द्वारा दुस्साहस करना सही निर्णय और विवेक बुद्धि के आदेश के विरुद्ध था। उसकी घातक परिकल्पना का श्रेय शैतानी जादूगरी को देना चाहिए। मूर्ति पूजा और अभिचार का दमन करने में शाऊल ने बहुत जोश दिखाया था, लेकिन फिर भी पवित्र आज्ञा के प्रति उसकी अनाज्ञाकारिता में वो परमेश्वर के प्रति विरोध की उसी भावना से प्रेरित हुआ था और यथार्थ में शैतान द्वारा ऐसे प्रेरित था जैसे जादू टोने का अभ्यास करने वाले होते हैं। और जब उसकी निंदा की गई उसने विद्रोह के साथ हठीलेपन को भी जोड़ दिया। यदि वह मूर्ति पूजकों के साथ निसंकोच एक भी हो जाता तो परमेश्वर के आत्मा का इससे बड़ा अपमान नहीं कर सकता था। परमेश्वर के आत्मा या उसके वचन की चेतावनियों और फटकार की उपेक्षा करना खतरनाक कदम है। कई लोग शाऊल की तरह प्रलोभन का शिकार होकर पाप के वास्तविक स्वभाव के प्रति अंधे हो जाते हैं। वे स्वयं को संतुष्ट करते हैं कि उन्हें एक अच्छा लक्ष्य दिखाई दे रहा है और उन्होंने परमेश्वर के नियमों से दूर जाकर कोई गलती नहीं की। इस प्रकार वे अनुग्रह के आत्मा का प्रतिरोध तब तक करते हैं जब तक उसकी आवाज सुनाई देना बंद न हो जाए, और फिर वे उन्हीं के द्वारा चुने हुए भ्रम के अधीन हो जाते हैं। शाऊल के रूप में परमेश्वर ने इसराइल को उनका मनपसंद राजा दिया था, जैसा कि शमूएल ने गिलगाल में शाऊल को राज्य देने के समय कहा, अब उस राजा को देखो जिसे तुमने चुन लिया और जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। पहला शमूएल 12:13। देखने में सुदर्शन, कुलीन डीलडॉल और राजसी आचरण का धनी, उसका रंग रूप राजसी गौरव उनकी धारणा से मेल खाता था और उसका अपना साहस और सेना संचालन में योग्यता वे विशेषताएं थीं जिनके द्वारा उनकी दृष्टि में अन्य राष्ट्रों से आदर और सम्मान प्राप्त हो सकता था। उन्हें इस बात की कम ही चिंता थी कि उनके राजा के पास वे विशेष गुण होने चाहिए जो उसे निष्पक्षता और न्याय के साथ राज करने के योग्य बनाए। उन्होंने ऐसे राजा के लिए प्रार्थना नहीं की जो चरित्र से कुलीन हो, जो परमेश्वर से प्रेम करता हो और उसका भय मानता हो। उन्होंने परमेश्वर से ये सम्मति नहीं मांगी कि शासक के पास कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिससे वो परमेश्वर के चुने हुए लोगों की तरह उनके विशिष्ट पवित्र चरित्र को संरक्षित रख सके। वे परमेश्वर की इच्छा नहीं, अपनी ही इच्छा के बारे में सोच रहे थे। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उनकी इच्छानुसार राजा दिया, वह जिसका चरित्र उनके चरित्र का प्रतिबिंब था। उनके हृदय परमेश्वर को समर्पित नहीं थे और उनका राजा भी पवित्र अनुग्रह द्वारा अनियंत्रित था। इस राजा के राज में उन्होंने वह अनुभव प्राप्त किया
जो इस कारण आवश्यक था कि वे अपनी गलती को देख सके और परमेश्वर के प्रति स्वामी भक्ति की ओर लौट आए।
फिर भी परमेश्वर ने शाऊल को राज्य का उत्तरदायित्व सौंपकर उसे अकेला नहीं छोड़ा। उसने पवित्र आत्मा को उस पर उतरने दिया ताकि उस पर उसकी कमजोरियां और पवित्र अनुग्रह की उसकी आवश्यकता प्रकट हो सके। और यदि शाऊल ने परमेश्वर पर निर्भर किया होता तो परमेश्वर उसके साथ होता। जब तक उसकी इच्छा परमेश्वर की इच्छा से नियंत्रित थी, जब तक वो परमेश्वर के आत्मा के अनुशासन के प्रति समर्पित था, परमेश्वर ने उसके प्रयत्नों को सफलता का ताज पहनाया। लेकिन जब शाऊल ने परमेश्वर के बिना कार्य करने को चुना, प्रभु उसका मार्गदर्शक नहीं रह सकता था और वो उसे एक तरफ करने को विवश हो गया। फिर उसने सिंहासन पर उसे बैठाया जो उसके मन के अनुसार था, वो नहीं जो चरित्र में निर्दोष था, लेकिन जो स्वयं पर विश्वास रखने के बजाय परमेश्वर पर निर्भर करता हुआ उसकी आत्मा द्वारा निर्देशित था और जो पाप करने पर निंदा और सुधार के लिए समर्पित था।